पूंजीवाद की प्रवृत्ति भी विस्तारवादी एवं आक्रामक है, जो नए नए बाजार प्राप्त करने की आकांक्षा से जुड़ी हुई है, किंतु इसके साथ साथ उपलब्ध साधनों की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास भी चलता है। औपनिवेशिक क्षेत्रों में पूंजीपति का प्रवेश केवल आक्रमण के माध्यम से ही नहीं अपितु उत्पादन संगठन के नए उपायों के विकास द्वारा भी हुआ था। चूंकि यह संक्रमण का युग था, अतः यह युद्ध भी मध्ययुगीन सामंती युद्धों तथा वाणिज्यपरक एवं औपनिवेशिक युद्धों, जो पूंजीवादी राज्यों की विशेषता है, का मिश्रण थे। कुल मिलाकर 17वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड एवं नीदरलैंड जैसे उभरते हुए बुर्जुआ राज्यों के अलावा अधिकांश राज्यों के संदर्भ में यह युद्ध सामंती ढंग के युद्धों का एक रूप थे। हाँ, उत्तम तकनीक के समावेश के कारण यह युद्ध अधिक बड़े पैमाने पर होते थे और उन्हें निरंकुश राज्य की केंद्रीभूति अफसरशाही का समर्थन प्राप्त था। पुनर्जागरण काल की कूटनीतिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से राजवंशीय मुद्दों से ही संबंधित थीं। 17वीं शताब्दी के आरंभ के एक फ्रांसीसी उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सम्राट अथवा उसके मंत्री के विरुद्ध सामंती कुलीन जनों का विद्रोह परोक्ष रूप से किसी अन्य शासक वंश के साथ युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर देता था। 1630 में लुई 13वें के मंत्री कार्डिनल रिसिलियो के विरुद्ध षड्यंत्र की असफलता के बाद पराजित अभिजात गुट स्पेन के शासक से मिल गया, जो फ्रांस के राजा का रिश्तेदार था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस में धार्मिक युद्धों में वृद्धि का कारण कुछ तो यह था कि 1559 में स्पेन के साथ संधि हो जाने के कारण कुलीन जनों के लिए लाभकारी युद्धों के अवसर कम हो गए थे। यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी में जब युद्धों के वाणिज्यिक एवं औपनिवेशिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण थे, विशेषकर इंग्लैंड, नीदरलैंड और एक हद तक फ्रांस के संदर्भ में, तब भी युद्धों के नामों से ही स्पष्ट हो जाता है कि उनमें वंशीय तत्व कितने दृढ़ थे। जैसे स्पेनी उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध, मध्य एवं पूर्व यूरोप में 18वीं सदी के युद्धों के कारण अनेक प्रांत एक शासक के अधिकार से निकलकर दूसरे शासक के अधिकार में चले गए और वहाँ के निवासियों में कोई महत्वपूर्ण विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि यह एक परंपरागत कहावत थी कि शासक वंश के परिवर्तन से पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रम में कोई उलटफेर नहीं होता था। इसकी तुलना फ्रांसीसी क्रांति के दौरान होने वाले युद्धों तथा नेपोलियन की विजयों के यूरोप पर पड़ने वाले क्रांतिकारी सामाजिक प्रभावों से की जाए तो बात और स्पष्ट हो जाती है। इस काल के व्यापार एवं वाणिज्य के मान्य पंडित डेनिश इतिहासकार क्रिस्टोफ ग्लेमन ने कहा है कि आधुनिक यूरोप के आरंभिक वर्षों में युद्ध अथवा संघर्ष के जो कारण थे, उनमें धर्म एवं वंशीय साम्राज्यवाद जैसे कारकों की तुलना में व्यापार का स्थान तीसरा था। साथ ही हमें यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि विभिन्न सरकारें अपनी विदेश नीति के लिए जो कदम उठाती थीं, उनके लिए वे कभी कभी वाणिज्यिक बहाने खोज लेती थीं। बहरहाल, इसमें कोई संदेह नहीं कि 17वीं शताब्दी में होने वाले आंग्ल डच युद्ध पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा के परिणाम थे। स्पेन के विरुद्ध नीदरलैंड के युद्ध, नीदरलैंड का विद्रोह तथा एलिजाबेथ के काल में स्पेन के विरुद्ध इंग्लैंड के युद्ध, विशेषकर स्पेनी आर्मेंडा के दौरान की विशेषता थी कि यथार्थ या सामंती अंशानुगत विजय के खतरे के विरुद्ध राष्ट्रीय हमवर्गी एकता। हमने सभी युद्धों की बारंबारता एवं उनके उद्देश्यों का विवेचन किया है। अब हम युद्धों में प्रयुक्त भौतिक एवं मानवीय साधनों की चर्चा करेंगे। इसे हमें इस पर भी विचार करना है कि सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण की दृष्टि से युद्धों के लिए निर्मित असैनिक एवं सैनिक तंत्र के जो प्रभाव आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे पर पड़े, वे लाभकारी थे अथवा हानिकारक। 15वीं शताब्दी के अंत से लेकर 1710 के बीच स्पेन, फ्रांस, रूस, नीदरलैंड एवं इंग्लैंड की सैनिक जनशक्ति के आंकड़े अगले पृष्ठ पर देखे जा सकते हैं। ये आंकड़े इस प्रकार हैं, तिथि स्पेन, फ्रांस, रूस, नीदरलैंड, इंग्लैंड। 1410 का दशक, सॉरी 1470 का दशक, स्पेन 20,000, फ्रांस 40,000, रूस आंकड़े प्राप्त नहीं, नीदरलैंड स्वतंत्र नहीं, इंग्लैंड 25,000। तिथि 1550 का दशक, स्पेन 1,50,000, फ्रांस 50,000, रूस आंकड़े प्राप्त नहीं, नीदरलैंड स्वतंत्र नहीं, इंग्लैंड 20,000। तिथि दशक 1590 का, स्पेन 2,00,000, फ्रांस 80,000, रूस आंकड़े प्राप्त नहीं, नीदरलैंड 20,000 और इंग्लैंड 80,000। दशक 1630, स्पेन 3,00,000, फ्रांस 1,50,000, रूस 35,000, नीदरलैंड 50,000, इंग्लैंड आंकड़े प्राप्त नहीं। 1650 का दशक, स्पेन 1,00,000, फ्रांस 1,00,000, रूस आंकड़े प्राप्त नहीं, नीदरलैंड आंकड़े प्राप्त नहीं, इंग्लैंड 70,000। 1670 का दशक, स्पेन 70,000, फ्रांस 1,20,000, रूस 1,30,000, नीदरलैंड 1,10,000, इंग्लैंड आंकड़े प्राप्त नहीं। अब 1700 का दशक, स्पेन 50,000, फ्रांस 4,00,000, रूस 1,70,000, नीदरलैंड 1,00,000, इंग्लैंड 87,000। मूल्यों में स्फीति के कारण एक सैनिक को युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार कराने का खर्च 1530 से 1630 के बीच 5 गुना बढ़ गया था। केवल वे ही देश इस खर्च को वहन कर सकते थे जहां उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही थी। 18वीं शताब्दी के दौरान शांति काल में भी निरंकुश सम्राट अपने राजस्व का 70% भाग सैनिक कार्यों के लिए रखते थे। सैनिक गतिविधियों को दी गई इस महत्ता के सामाजिक परिणाम इस प्रकार थे। 16वीं एवं 17वीं शताब्दियों के दौरान संपूर्ण पश्चिम एवं मध्य यूरोप में कुलीन वर्गीय जागीरों में उत्तराधिकार की व्यवस्था के अनुसार संपत्ति का अधिकार सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। जागीर को बेचने अथवा उसके उपविभाजन को अवैध बनाने के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जा रहे थे ताकि कुलीन वंश के पद एवं प्रतिष्ठा को कायम रखा जा सके। इस परिस्थिति में कुलीन वर्ग के छोटे पुत्र सैनिक सेवा का करियर अपना लेते थे, विशेषकर इसलिए भी कि सभी देशों में अफसर वर्ग की भर्ती तो कुलीन परिवारों में से ही होती थी। साधारण सैनिक की भर्ती तो विशेषकर पूर्वी यूरोप में प्रायः जबरदस्ती की जाती थी और इस युग में उसका संबंध पूर्व में प्रचलित कृषि दास प्रथा के विस्तार से था। चूंकि निरंकुश राजतंत्र अपने कृषकों को हथियार देने से डरते थे, अतः पूर्व एवं पश्चिम यूरोप में भाड़े के विदेशी सैनिकों का प्रयोग अत्यंत सामान्य बात थी। स्विट्जरलैंड के कृषकों ने अपने देश में तो सामंतवादी बेड़ियों को उखाड़ फेंका था, किंतु बंजर पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या के अतिरेक की पुरानी बीमारी ने उन्हें अच्छा वेतन देने वाले किसी भी शासक वंश की सैनिक सेवा में भर्ती होने को मजबूर कर दिया। अन्य क्षेत्रों में भी भाड़े के सैनिक मिल जाते थे, किंतु वे इतने अच्छे नहीं थे जितने स्विट्जरलैंड के। भाड़े के विदेशी सैनिकों का प्रयोग कोई नई बात नहीं थी, यह तो 11वीं सदी से आगे के सामंती राज्य का ही विस्तार था। आंग्ल नॉर्मल राजतंत्र ने अपने देश के अंदर तथा विदेशों में अपनी सैनिक गतिविधियों में भाड़े के विदेशी सैनिकों का व्यापक प्रयोग किया था। जब शाही निरंकुशता को चुनौती देनी थी और सफलतापूर्वक देनी थी, जैसे कि 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में, तब कॉमवेल के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह कृषक वर्ग को शस्त्र सज्जित करके नव आदर्श सेना का गठन करे। इसका सामाजिक परिणाम यह हुआ कि औसत सैनिक भी क्रांतिकारी विचार रखने लगा, जो निजी संपत्ति की मूल धारणा पर ही कुठाराघात करते हुए प्रतीत होते थे। एक बार इंग्लैंड में गणतंत्र के स्थान पर ही कुठाराघात करते हुए प्रतीत होते थे नहीं सॉरी एक बार इंग्लैंड में गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई नहीं कि विशेषकर 1688 में संसद द्वारा जेम्स द्वितीय को उखाड़ फेंकने के बाद शासक वर्ग ने अस्थाई सेना को समाप्त करके उसके स्थान पर शक्तिशाली नौसेना का विकास करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। यह निर्णय वाणिज्यिक एवं पूंजीवादी राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप था, जहां भूमिगत जागीरों को वंशानुगत अधिकार द्वारा हड़प लेने की तुलना में औपनिवेशिक एवं व्यापारिक गतिविधियां उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण थीं। सेना में जो भर्ती की जाती थी वह या तो यूरोप के भाड़े के सैनिकों में से की जाती थी या फिर मेहनत कश गरीबों में से, जो अपनी जीविका चलाने के लिए उत्सुक होते थे। यूरोपीय महाद्वीप में तो यह नीति बन चुकी थी कि अफसर वर्ग की भर्ती केवल अभिजात वर्ग से हो, किंतु इसके विपरीत इंग्लैंड में छोटे अधिकारी से लेकर कर्नल तक का प्रत्येक पद प्राप्त करने के लिए धन देना पड़ता था। जेफ्रे वेस्ट ने कहा है कि इनमें से किसी का उद्देश्य अभिजात वर्ग की प्रतिष्ठा को गिराना नहीं था। ब्रिटिश पियर एवं भद्रजन वर्ग अब तक इस नगदी लेन देन के अभ्यस्त हो गए थे। इसका अर्थ केवल यही था कि जो अभिजात बन जन सैनिक करियर के इच्छुक थे उन्हें उसे समय का दाम चुकाना पड़ता था, और साथ ही बुर्जुआ विरोधी पूर्वाग्रह बहुत कम महत्वपूर्ण था, जैसा कि हम वाणिज्यवाद वाले अध्याय में देखेंगे। परंपरागत सामंती उद्देश्यों को कायम रखने के उद्देश्य से निरंकुशवाद एवं कुलीन तंत्र के गठबंधन का समर्थन करने अथवा औपनिवेशिक एवं वाणिज्यिक संबंधी आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के सिद्धांतों अथवा संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा सकता था। इस प्रकार 16वीं सदी तक राष्ट्रीय राज्य प्रणाली के प्रादुर्भाव ने यूरोप में एक नए राजनीतिक स्वरूप का प्रारंभ कर दिया था। केंद्रीकृत राष्ट्रीय राज्यों में समन्वय स्थापित करने एवं उन्हें मिलाने की प्रक्रिया पूर्वी यूरोप की तुलना में पश्चिमी यूरोप में पहले प्रारंभ हुई एवं अधिक विकसित हुई। लगभग सभी महत्वपूर्ण केंद्रीकृत क्षेत्रीय राज्यों का रूप साम्राज्य का था। उस राज्य विशेष में रहने वाले लोगों ने राजाओं की आज्ञा मानना प्रारंभ कर दिया था। पैतृक उत्तराधिकार के सिद्धांत ने राज्य को ज्यों का त्यों रखने में सहायता दी। 1500 के लगभग यूरोपीय राज्य अभी प्रमुखता राजवंशीय राज्य थे, अर्थात उन प्रदेशों की राजनीतिक एकता इस कारण थी कि वे एक राजवंश के ही अधीन थे, किंतु फिर भी सामंती व्यवस्था का हास्य हो रहा था। साथ ही यूरोपीय क्षितिज भी विस्तृत हो रहा था। साहसी नाविक दूसरे महाद्वीपों का समुद्री मार्ग खोज रहे थे, और इससे यूरोप के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। मध्ययुगीन यूरोपीय संस्कृति यूरोप तक ही सीमित थी, किंतु आधुनिक यूरोप की सभ्यता विश्वव्यापी बनी। इन्हीं सब परिवर्तनों ने 15वीं और 16वीं शताब्दियों को एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल बना दिया है। प्रत्येक राज दरबार में कुछ मंत्री थे जो अपने विदेशी प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध विस्तारवादी नीतियां अपना रहे थे, और यूरोप विभिन्न देशों के साथ अपने युद्धों में फंसा हुआ था। युद्धों के बढ़ते हुए व्यय ने सभी देशों में कर को अधिकाधिक बढ़ा दिया था, और इसी प्रश्न को लेकर 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के राजवंशी राज्यों का समाज की नवोदित शक्तियों के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। सिद्धांत रूप में राजा अपने राज्य का स्वामी था, किंतु व्यवहार रूप में उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हो गया था कि वह अपने प्रजाजनों के जीवन एवं संपत्ति के स्वामी नहीं हैं। उनके राजनीतिक आक्रमणों के लिए युद्ध और युद्ध के लिए कराधान अनिवार्य थे, किंतु कर लगाने का यही प्रश्न प्रत्येक काउंसिल अथवा सदन में संघर्ष का प्रश्न बन गया। यूरोप में सर्वत्र राजाओं के नीचे कई भूस्वामी, समृद्ध व्यापारी आदि थे जो अपने ऊपर लगाए जाने वाले कर की सीमा सीमित ही रखना चाहते थे। इस प्रश्न को लेकर सभी जगह राजाओं का विरोध हो रहा था, किंतु सभी स्थानों पर विरोध को संगठित रूप देने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। इंग्लैंड में यह सुविधाएं विद्यमान थीं, अतः इंग्लैंड में इन शक्तियों ने अन्य देशों की तुलना में राजतंत्र पर नियंत्रण भी शीघ्र ही स्थापित कर लिया। इस संदर्भ में 17वीं सदी के यूरोप में होने वाले विद्रोहों को सामाजिक दृष्टि से क्रांतिकारी कहने के बजाय राज्य की मांगों के विरुद्ध संरक्षणवादी कहा जा सकता है। 17वीं शताब्दी को राजनीतिक संकट के काल की संज्ञा भी दी जाती है। यह राजनीतिक एवं वास्तव में निरंकुशतावाद की समस्या थी।